समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून नेहा। Neha, I was just thinking about it. What an exciting moment it was yesterday when the hero came back home. In fact, I'm referring to astronaut Shubhanshu Shukla, who returned to India after his historic space sojourn to a warm welcome by the Union Minister of Science and Technology, Jitendra Singh. Delhi Chief Minister Rekha Gupta was there, and also the ISRO Chairman Dr. V. Narayanan was there at the Delhi airport. He is likely to meet our Prime Minister and then make a visit to his hometown, Lucknow, before coming back to the capital again to take part in the National Space Day celebrations.
Jee.
We will be giving you all the updates as the news comes, but right now, first the news making headlines at this hour. Stalemate continues in Parliament over Bihar's electoral roll and other issues. Lok Sabha held a discussion on Captain Shubhanshu Shukla's space mission. Both houses adjourned for the day.
Videsh Mantri Dr. Subramaniam Jaishankar aaj shaam Nayi Delhi mein Cheen ke Videsh Mantri Wang Yi ke saath dvipakshiya vaarta karenge.
Center to take strict action against companies involved in manufacturing of fake pesticides, fertilizers and seeds.
मौसम विभाग का आज महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी।
यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की एंड यूरोपियन लीडर्स सेट टू मीट यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप इन वॉशिंगटन टुडे टू रिजॉल्व वॉर इन यूक्रेन।
और बुल्गारिया में अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में पहलवान विशाल आज कांस्य पदक के लिए खेलेंगे।
And now, Neha, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about semiconductor and artificial intelligence or AI revolution in India. Of course, it has been rightly said by Fei-Fi Li, the co-director of the Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence and an IT professor at the Graduate School of Business, that artificial intelligence is not a substitute for human intelligence. It is a tool to amplify human creativity and ingenuity.
बिल्कुल, सत्य नडेला ने भी कहा है, एआई सिर्फ एक उपकरण नहीं है, यह मानवीय रचनात्मकता का एक सहयोगी है।
So today, listeners, we are diving into something sizzling, sparkling and so smart, the semiconductor and AI revolution in India. These two technologies are the backbone of everything modern today. They power our devices, guide our decisions, run our businesses, and even help predict the weather. And without them, of course, the world would be slower, less connected, and a whole lot less exciting.
जी बिल्कुल, अब जरा ठहरिए, इससे पहले कि आपका दिमाग चकराने लगे, हम इसे आपको और थोड़ा सहज भाषा में समझाते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है वो सिर्फ इंजीनियरों के लिए चर्चा का विषय नहीं है। ये छोटी छोटी चिप्स ही हर चीज के पीछे असली दिमाग है। आपका स्मार्टफोन, उनमें भी चिप है। आपका लैपटॉप, उनमें भी चिप है। ये तकनीक की दुनिया के गुमनाम हीरो हैं, लेकिन सच तो ये है कि भारत अब बड़ी लीग में कदम रख रहा है।
Right, Neha. In fact, semiconductors are the foundational technology enabling the advancements in artificial intelligence. AI requires massive computational power, and specialized semiconductor chips like GPUs and ASICs are crucial for training and running AI models efficiently. These chips, designed for parallel processing and specific AI tasks, allow AI to handle large data sets and complex computations necessary for applications like autonomous vehicles, healthcare diagnostics, and also smart devices. Till now, countries like the US, Taiwan, and South Korea had a near monopoly on making semiconductors. And what about India? We were more into software, not the hardware side of things. But fast forward to today, India is making power moves. The government launched the Semicon India program with a 76,000 rupees crore package.
जी बिल्कुल सेमीकंडक्टर आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार है जो स्मार्टफोन और ऑटोमोबाइल से लेकर रक्षा और चिकित्सा उपकरणों तक हर चीज को शक्ति प्रदान करते हैं भारत ने आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर अपने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है बड़ी कंपनियां भारत में अपना कारोबार स्थापित कर रही हैं गुजरात और तमिलनाडु नए चिप स्टॉप बन रहे हैं बड़ी कंपनियां भारत में अपना कारोबार इस तरीके से बढ़ा रही हैं
जी एंड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे एड्रेस आल्सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स विल बी अवेलेबल इन द मार्केट बाय द एंड ऑफ 2025 ही आल्सो अर्ज द कंट्रीज यूथ टू डेवलप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द थॉट ऑफ हैविंग अ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री इन इंडिया फर्स्ट बिगैन 50 to 60 years ago, but the plan was stuck in limbo until the government started working on the semiconductor industry in a mission mode, under which 6 chip plants are already under construction and 4 more have received the green light.
Aaj semiconductor jo puri duniya ki ek taakat ban gaya hai, hamare baad kai desh semiconductor mein aaj maharat hasil karke duniya mein apni taakat ko prasthapit kar rahe hain. Aaj हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ाया है 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे दिया है और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया भारत की बनी हुई भारत में बनी हुई भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी
आइए अब एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बात करते हैं एआई क्या है यह कंप्यूटर विज्ञान की एक व्यापक शाखा है जो ऐसी स्मार्ट मशीनों के निर्माण से संबंधित है जो ऐसे कार्य करने में सक्षम हो जिनके लिए आमतौर पर मानवीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को मानव मस्तिष्क की क्षमताओं का अनुकरण करने या उनमें सुधार करने की अनुमति देती है
Yes, India's rapid AI advancements are driven by strong government initiatives, positioning it as a global AI powerhouse. As artificial intelligence adoption accelerates across industries, India's proactive approach is not only strengthening its digital economy, but also paving the way for self-reliance in critical technologies.
भारत एआई नवाचार से भरपूर है 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने वाले उपकरणों से लेकर स्मार्ट कृषि प्रणालियों तक जो हमारे किसानों को बेहतर फसल उपज प्राप्त करने में मदद करती हैं एआई हम सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है उत्पादकता की बात करें तो इसमें वृद्धि हुई है एआई कार्यों को स्वचालित करता है जिससे मानव प्रयास और समय कम लगता है उदाहरण के लिए डेटा प्रविष्टि और रिपोर्ट निर्माण के लिए वित्त में रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन बेहतर निर्णय लेने की क्षमता होती है एआई में मशीन लर्निंग मॉडल पैटर्न और अंतर्दृष्टि की पहचान करने के लिए डेटा का विश्लेषण करते हैं उदाहरण के लिए मांग पूर्वानुमान और इन्वेंट्री अनुकूलन के लिए खुदरा क्षेत्र में पूर्वानुमात्मक विश्लेषण
Yes, and it also, of course, it does task automation also. AI systems can handle repetitive and mundane tasks with high accuracy. For example, like chatbots for customer service inquires in various, these inquiries are in various industries being used these days. Consistent outcomes are AI algorithms follow defined rules, ensuring consistency across processes. For example, like credit risk assessment in banking using machine learning models. And of course, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं
जी जैसे AI स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान और शिक्षा में सफलताओं को संभव बनाता है उदाहरण के लिए AI सहायता प्राप्त दवा खोज और व्यक्तिगत चिकित्सा और अंदाजा लगाइए कि इस AI क्रांति को कौन शक्ति प्रदान करता है जी हाँ हमारा दोस्त सेमीकंडक्टर चिप
यस एंड सो हियर इज द मैथ नेहा मोर चिप्स मोर कंप्यूटिंग पावर मोर पावर स्मार्टर AI Of course, a supercharged India. India is not just dreaming anymore. We are building factories, developing AI models, upskilling millions and partnering globally. This isn't just a revolution. It's a tech tsunami, isn't it?
जी अनुजा 2025 भारत ने नोएडा और बेंगलुरु में उन्नत 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन के लिए अपने पहले केंद्रों का उद्घाटन किया जो भारत में पहली बार हुआ है वहीं वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 में यह घोषणा की गई कि भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इस वर्ष उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगी 5 उत्पादन इकाइयां निर्माणाधीन हैं जो घरेलू क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही हैं
And in this field, Madhya Pradesh has made a significant stride in the IT and electronic sector with the inauguration of its first IT campus backed by an investment of 150 crore rupees over the next 6 years. And in July 2025, Netrasemi, a startup supported under the government's chip design scheme, has received venture capital investment of 107 crore rupees. The company is working on making chips for smart vision, CCTV cameras and Internet of Things applications.
निर्माण के क्षेत्र की अगर बात करें अनुजा, भारत पारंपरिक सिलिकॉन आधारित सेमीकंडक्टरों से नवीनतम सिलिकॉन कार्बाइड आधारित सेमीकंडक्टरों की ओर बढ़ रहा है। डिजाइन के क्षेत्र में अधिक उन्नत 3D ग्लास पैकेजिंग तकनीक को अपनाने की योजना है। ऐसी तकनीक रक्षा प्रणालियों, मिसाइलों, रडार और अंतरिक्ष में रॉकेट जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है।
Now, what is the potential of semiconductor industry in India? If we talk about that, it will offer huge job prospects. It expects a ripple effect from semiconductor industry growth. By 2026, it is projected to generate over 3 lakh jobs in downstream sectors like automotive, electronics and telecom.
भारत में असाधारण सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रतिभा पूल है जो विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों का 20% है इसके साथ ही ये 6 लाख अतिरिक्त नौकरियां सृजित कर सकता है
एंड द गवर्नमेंट इज डेडिकेटेड टू प्रोपेलिंग इंडिया इनटू द ग्लोबल फोरफ्रंट एज द सेमीकंडक्टर हब अंडर द बैनर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड डिजिटल इंडिया
जैसा कि हमने चर्चा किया कि यह सिर्फ इंजीनियर्स और कोडर्स के बारे में नहीं है यह क्रांति आप पर भी उतनी ही असर डालती है यह आपके लिए बेहतर फोन बेहतर स्वास्थ्य सेवा बेहतर नौकरियां और बेहतरीन गैजेट्स के बारे में है तो चाहे आप छात्र हो या स्टार्टअप के सपने देखने वाले यह क्रांति आपके लिए है
सो रिमेम्बर नाउ द फ्यूचर इजंट अराइविंग इट्स बीइंग मेड इन इंडिया
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है
एंड इन द फर्स्ट वी टेक यू ऑल टू मणिपुर द स्टेट ऑफ मणिपुर वेयर डिफरेंट कम्युनिटीज reside together and it is a land where not a single month has passed without a festival. The Hindu community of the state celebrated Krishna Janmashtami on Saturday. The Meitei community who live in the Imphal Valley and other valley districts follow Hinduism and hence the festival is widely celebrated in these districts. Let's hear from our Imphal correspondent how the festival was celebrated in the state.
In Manipur, more than 41% of the population practice Hinduism, becoming one of the largest religious community of the state. Therefore, the Krishna Janmashtami was celebrated across the valley districts last Saturday. However, the main celebration was held at Sri Sri Govindaji Temple and Iskol Mandir, both located in Imphal. Besides, the grand celebration was also held at Gopinath Mandir in Bishnupur district. In the early morning, devotees visited these temples and perform puja and prayer to Lord Krishna. While visiting these temples, the devotees also brought flowers, especially lotus, fresh vegetables and fruits and other edible items to offer to the Lord. Most of the women wore traditional dress on the occasion. Manipur Governor Ajay Kumar Bhalla visited Iskol Mandir on the day of Krishna's Janmashtami and offered prayer to Lord Krishna. He also inaugurated a seminar on Krishna Tattva, character building, which was organized on the occasion of Krishna Janmashtami. The main and colorful events of the festival took place in the evening at these temples. Various troops performed cultural items and prasad was distributed to the devotees. All the devotees participated in the songs and hymns dedicated to Lord Krishna and Leela on the life of Lord was played by the artists. The festival of Krishna Janmashtami reminds us of the karma taught by Lord Krishna to mankind, which involves worship of work and carrying out our duty without any expectation of reward. The teaching of Lord Krishna remains the guiding principle of mankind. Jai Jai Thakchom, Akashvani News Parikrama, Imphal.
वंदे भारत ट्रेन न केवल भारत का अभिमान है बल्कि वह आत्मनिर्भरता और तकनीकी विकास का भी प्रतीक है। ऐसी ही सबसे लंबा अंतर काटने वाली और गतिशीलता को बढ़ावा देने वाली वंदे भारत ट्रेन नागपुर से पुणे स्टेशन के बीच हाल ही में शुरू की गई। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से।
बहुप्रतीक्षित नागपुर पुणे वंदे भारत ट्रेन को 10 अगस्त को पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस ट्रेन के शुरू होने पर खुशी जाहिर करते हुए इसकी उपयोगिता और अन्य प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी।
नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन चली है। सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन की बात यह है कि आज तक भारत में जितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई उसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ये नागपुर पुणे की है। 881 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 घंटे में ये ट्रेन पूरा कर रही है। सारे मेजर स्टेशन पर ये रुक रही है। इसके कारण महाराष्ट्र में विशेष रूप से विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के लोगों की कनेक्टिविटी पुणे के साथ बहुत बड़े पैमाने पर इसके कारण बढ़ने वाली है। और इस ट्रेन को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमने ये भी मांग की है कि अभी हमारी ट्रेन अहिल्यानगर से दौन जाती है और दौन से फिर पुणे जाती है, डी रूट होती है। इसके कारण 100 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता है। इसलिए सीधा नगर से पुणे हम लोग रूट तैयार करें जिससे MIDC को भी फायदा होगा। और उसके साथ साथ हमने ये भी ऑफर किया है कि हमारा जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है माननीय गडकरी जी के साथ महाराष्ट्र की सरकार बना रही है, जो संभाजीनगर से अहिल्यानगर और अहिल्यानगर से पुणे है, उसको ही हम एडिशनल राइट ऑफ वे देकर अगर रेलवे के साथ इंटीग्रेट कर पाए तो ये काम बहुत फास्ट होगा और रेलवे का जो प्रवास है उसमें गतिशीलता भी आएगी, उसमें एक घंटा और हम बचा पाएंगे।
इस ट्रेन के शुरू होने से नागरिकों में काफी उत्साह है और इसे अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
And now we take you all to Sri Lanka. Let us listen to the report filed by our Colombo correspondent on a six-day film festival taking place there.
A six-day film festival opened today at the Trincomalee campus of Eastern University in Sri Lanka. The festival will showcase six Indian films in different languages through Saturday, which includes the biographical sports drama 83. Governor of the Eastern Province, Professor Jayantalal Ratnasekara, inaugurated the event. At the opening ceremony, Director of Swami Vivekananda Cultural Centre, Professor Ankuran Datta, underlined the diversity and vibrant character of Indian cinema, which although just 111 years old, has grown into one of the world's most dynamic film industries. The festival aims to strengthen cultural bonds between India and Sri Lanka through the medium of cinema. For Parikrama, Ahmed Muin Faruqi from Colombo.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। बुल्गारिया में फ्री स्टाइल अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विशाल आज कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे। इससे पहले विशाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के मैगोमेदोव से हार का सामना करना पड़ा।
And if we talk about the business, benchmark domestic equity indices today started the week with a strong momentum, ending with gains of around 1%. Sensex rose 676 points to close at 81,274. Similarly, Nifty gained 246 points to settle at 24,877. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading down at 1,20 rupees per 10 grams, while silver fine was also trading down at 1,14,460 rupees per kilogram when reports last came in.
अब आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद।
In today's episode, we will try to recreate some aspects of Netaji's life. On this day in 1945, it was reported that the plane in which Netaji was traveling had crashed near Taihoku Airport in Taiwan, and he reportedly succumbed to injuries in a nearby Japanese military hospital. Let's unravel the momentous life of one of the bravest personalities of Indian freedom struggle.
Subhas Chandra Bose, endearingly called Netaji, was born on 23rd January 1897 in Cuttack. He graduated from the Calcutta University in 1919 and cleared Indian Civil Services exam in 1921. That a tiger cannot be caged for too long. The free-spirited Bose resigned from civil services upon being encouraged by Chittaranjan Das to work for his country's freedom than to be a slave of the British. Bose supported Swaraj and was also of the opinion that freedom is not given, it is taken. So he devised a strategy to free the motherland from the clutches of the foreigners. And there was no looking back.
At the start of the Second World War in 1939, he initiated a mass movement under which he started uniting people from all over the country. Since there was a massive response to his call, Bose was immediately arrested by the British. While under house arrest, he planned his dramatic escape. Bose grew a beard and left his house dressed as a Pathan so that the British could not identify him. On the night of January 19, 1941, Bose first went to Bihar and then via Peshawar, Kabul, Moscow and Rome, finally reached Germany, where he met Hitler. He set up a Free India Center in Berlin and started the Azad Hind Radio.
This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia, my countrymen in East Asia. While I am in Tokyo, I desire to address a few words to you, and I have no doubt that you will give them due consideration.
In 1943, Bose left for Southeast Asia to continue the fight for freedom. He revived the Indian National Army. Netaji named the regiments of INA after Gandhi, Nehru, Maulana Azad. There was also an all-women regiment named after Rani of Jhansi, Lakshmibai. Under Netaji's leadership, INA drew prisoners of war and thousands of civil volunteers. Bose wished to free India with the help of Japanese forces by fighting together against British Empire. When British forces captured the Malay Peninsula, Bose chose not to surrender and planned to continue the fight from Manchuria with the aim to get support from Soviet Union. While going to Manchuria, his plane crashed.
There is a controversy regarding the death of Bose. The Japanese aircraft in which Netaji was travelling on 18th August 1945 crashed and Bose reportedly suffered severe burns. According to some reports, he died in a nearby Japanese hospital. It is believed that his body was cremated and his ashes were interred in the Renkoji Temple in Tokyo. Though there is a dispute if the ashes interred in the temple are indeed his. This has given rise to many theories that Bose may have survived the crash. Bose was described as patriot of patriots by Gandhiji. His voice continues to instill patriotism.
I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.
18th August is also the birth anniversary of Vijay Lakshmi Pandit. She was a politician and diplomat who holds the distinctions of being the first Indian woman to hold a cabinet post in pre-independent India and also the first woman president of the United Nations General Assembly.
And continuing with the personalities, we would like to share the news that Terence Stamp, the English actor who often played the role of a complex villain, including that of General Zod in the early Superman films, has died. He was 87. His family said that the veteran actor died yesterday. In a career that spanned six decades, the Oscar-nominated actor starred in films, including The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, and Far from the Madding Crowd. And Stamp's Superman co-star, Sarah Douglas, described him as beyond gorgeous and a talented actor.
आज पुण्यतिथि है श्री नारायण चतुर्वेदी की. उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था. वे हिंदी के साहित्यकार, प्रचारक, सर्जक तथा पत्रकार थे जो आजीवन हिंदी के लिए समर्पित रहे. वे सरस्वती पत्रिका के संपादक भी थे. उन्होंने राष्ट्र को हिंदीमय बनाने के लिए जनता में भाषा की जीवंत चेतना को बढ़ावा दिया. अपनी अमूल्य हिंदी सेवा द्वारा उन्होंने भारत रत्न, मदन मोहन मालवीय तथा पुरुषोत्तम दास टंडन की योजनाओं और लक्ष्यों को आगे बढ़ाया.
And coming to the birth anniversaries, the composer of the most popular version of the devotional song Raghupati Raghav Raja Ram, sung by Gandhiji during the Salt March, and India's national song Vande Mataram, as it is heard today, is none other than Vishnu Digambar Paluskar, who was born on this date in 1872.
Raghupati Raghav Raja Ram.
Unfortunately, during a celebration in his village in his early years, a firecracker burst near Vishnu's face and he lost his eyes to an extent that he could no longer pursue further education, and he continued with his talent of music. Slowly, his popularity grew and he became very popular. He broke a long-standing tradition of Indian music by giving a public concert in Saurashtra, and he opened the Bharatiya Gandharv Mahavidyalaya as well.
दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। हमारे श्रोता अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। इंसान प्रतिभा, परिश्रम और लगन से किसी एक क्षेत्र में खास मुकाम हासिल करता है, लेकिन अगर कोई इंसान अलग अलग क्षेत्र में हाथ डाले और उनमें अलग अलग खास मुकाम बनाता चले तो उन्हें हम गुलजार ही कहेंगे। अगर आप गुलजार के काम का दायरा देखें तो यह यकीन नहीं होता कि एक ऐसा शख्स है जो इतनी सारी विधाओं में लगातार काम कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है।
Yes, and very few people know that his name is Sampuran Singh Kalra. Gulzar has donned more hats than one, whether in poetry or prose. His distinct expression has helped bring about ever new aspects and emotions in the journey of life. It was Bimal Rai who gave him his initial break and assigned Gulzar to write a song. Gulzar thus wrote his first song, Mura Gora Ang Lele, Sham Rang De De, which was very much liked by S.T. Barman and Bimal Roy and later became a very popular number.
Mura Gora Ang Lele.
Along with his long film career, Gulzar has also been setting new milestones in the field of literature. He also gave it new lease of life with his innovation. For some time now, he has been seriously interested in children's poetry and prose, and his title song for Jungle Book, who can forget that? Jungle Jungle Pata Chala Hai.
गुलजार को हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े दादा साहेब फाल्के अवार्ड, हॉलीवुड के ऑस्कर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, 21 बार फिल्म फेयर अवार्ड, कौमी एकता के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड, अदब के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार और भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। गुलजार को अपनी जिंदगी में जो शोहरत, इज्जत और लोकप्रियता मिली वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है।
Yes, he has given us many masterpieces, so it's very difficult to choose a few, but yes, here is another one which I admire him for.
मेरा कुछ सा
Another very beautiful movie from him was Andhi, and of course that is Neha's favorite song. Let's play that.
Tere bina zindagi se koi shikwa to nahi, shikwa nahi, shikwa nahi, shikwa nahi. Tere
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।